Şetelik. Şetelik. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम सुनने वालों को अश्विना का अभिवादन। हमारे सामने श्री हेमराज शंभू जी विराजमान हैं। आप पहले सरकारी हिंदी शिक्षक थे, फिर बाद में पर्यवेक्षक भी बने। आप लेखक, कवि, कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं। आपकी कविताएं और कहानियां परिचय से उत्तमा की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। आप मॉरिशस तथा भारत की कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी हुए हैं। धनराज शंभू जी, कृपया आप हमें अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए।
नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। मेरा नाम धनराज शंभू है, लोग मुझे आनंद से भी जानते हैं। जन्म कांतोगिल में, जो मुका ज़िले में पाया जाता है और मॉरिशस में स्थित है। पढ़ाई आदि के बाद 1977 में मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश पाया और वहाँ से प्रशिक्षित होकर जब मैं बाहर आया तो प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में कार्यरत रहा और लगभग 38 सालों तक हिंदी अध्यापक के रूप में मैं कक्षाओं में पढ़ाता रहा। 2015 में उप मुख्य अध्यापक का पद संभाला और 2018 में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। इसके अलावा अवकाश ग्रहण करने के बाद आजकल काचमलिते में हमारी एक पाठशाला चलती है, जो सरस्वती पाठशाला से प्रचलित है, और वहाँ पर अभी तक अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। कह सकता हूँ कि मैं 18 साल की उम्र से ही बैठका में अध्यापन का कार्य करता था और समय निकालकर कुछ लिखता रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे एक स्थापित लेखक भी मानते हैं।
जी हाँ, हम भी आपको एक स्थापित लेखक ही मानते हैं।
धन्यवाद।
आपने कब से लिखना आरंभ किया और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली धनराज जी?
वैसे तो जब छोटी अवस्था में होते हैं तो कुछ न कुछ वाक्य, निबंध आदि लिखते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब मैं बैठका में पढ़ाने लगा तो उस समय में, उस ज़माने में बैठकाओं में साल के अंत में वार्षिक उत्सव का आयोजन होता था।
बिल्कुल।
और उस अवसर पर बच्चों द्वारा कार्यक्रम की तैयारी करवाते थे और कभी कविता, कभी एकांकी रूपक आदि तैयार करना पड़ता था और उनसे करवाया जाता था, बुलवाया जाता था। तो उस अवसर से लाभ उठाकर मैं अपने ही एकांकी को प्रस्तुत करने के लिए सोचता था और प्रस्तुत भी करता था। इस तरह से मेरा लेखन वहाँ से शुरू हुआ। कह सकता हूँ कि 18-19 साल की उम्र में मैं लिखने लगा। फिर उसके पश्चात वहीं गांव के कुछ मेधावी और कर्मठ हिंदी अध्यापक थे, 8 लोग, और उन्होंने मिलकर सोचा कि चलो एक संघ बनाते हैं, और उन्होंने उस संघ बनाकर एक पहली पुस्तक कविता संग्रह के रूप में तरंगिनी नाम से निकाला, जो 1975 में था। उसके पश्चात अन्य लोगों से दोस्ती हुई और उनमें मुझे, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, पूजानंद नेमा, हेमराज सुंदर, मुकेश जी बोध तथा डॉक्टर जगा सिंह आदि के संग में आया और उन लोगों के साथ बैठता था। कभी कभी गोष्ठी होती थी और कभी कभी विदेश से लेखकों को बुलाकर वर्कशॉप, कार्यशाला का आयोजन करवाया जाता था और उसमें मैं भाग लेता रहा और इससे मुझे प्रेरणा मिलती गई। और साथ में मैं यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में तो बहुत ऐसी स्थिति होती है जिससे प्रेरित होते हैं। अब जैसे राजनीति से या परिवार विघटन, फिर कह सकते हैं कि जो गरीबों पर अत्याचार होता है, तथा इस प्रकार की मान लिया जाए स्थिति को देखकर प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ न कुछ लिखें, और बस यही मेरे प्रेरणा की स्रोत है।
बहुत सुंदर शंभू जी, आपने साहित्य की किन किन विधाओं में अपनी कलम चलाई है और कौन सी विधा आपको प्रिय है?
वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लगभग सभी लोग, सभी रचनाकार कविता से ही शुरू करते हैं।
बिल्कुल।
तो मैंने अपनी रचना कविता से ही शुरू की थी और प्रारंभ में पद्य विधा को लेकर चला, फिर दोस्तों के साथ आने पर मेरी रुचि गज़ल की ओर गई और मैंने गज़ल लिखना भी शुरू किया। उस समय में बहुत कम लोग लिखते थे गज़ल, एक आध उर्दू के शायर लोग लिखते थे, लेकिन मुकेश जीबोध जो मेरा मित्र था वो उर्दू पढ़ने जानता था तो वे लिखते थे, तो उनके साथ रहकर आपस में हम बोलते, उसने क्या लिखा मैंने क्या लिखा, एक दूसरे को सुनाते थे।
बिल्कुल।
और उससे प्रेरणा पाकर मैंने गज़ल कहना शुरू किया और उसके पश्चात मैंने देखा कि जब यूज ड्रामा फेस्टिवल मान लिया जाए यहाँ कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो नाटकों का आयोजन होता था उसमें हमारे छात्र भाग लेना चाहते थे, तो मैं एकांकी के क्षेत्र में आया, तो धीरे धीरे गद्य पद्य से गद्य की ओर आया और गद्य में कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुई, अभी 3 कहानी संग्रह है जिसे मैंने प्रकाशित करवाई है, एकांकी संग्रह 2 है, बाल साहित्य पर भी मैंने कलम चलाई, बाल साहित्य में मेरी 3 पुस्तकें हैं,
बहुत सुंदर
मेरे अपने, उनमें एक बच्चों के लिए कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह और एक एकांकी संग्रह है, और ये सभी ऐसे हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर अध्यापक उन्हें तैयार कर दें तो अवसर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और उन कविताओं या एकांकियों में ऐसा विषय है जैसे संगीत दिवस है, रक्षाबंधन है, ऐसे ऐसे मान लिया जाए विषय उठाया गया है जो उनसे संबंधित है और हमारे देश में इन सभी विषयों पर या इन त्योहारों को मनाया भी जाता है।
हाँ,
तो इस तरह हाँ। मैं कह सकता हूँ कि और अंत में आकर मैंने सोचा कि ये गद्य की ओर जब मैं आया हूँ तो मुझे एक उपन्यास भी लिखना चाहिए। किसी ने मुझे चुनौती दी कि आप ये सब लिखते हैं, एक उपन्यास लिखो तब जानेंगे कि आप लेखक हैं।
तो वह भी आपने लिख दिया।
तो मैंने सोचा कि जब बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ।
बिल्कुल।
अब पता नहीं वह उपन्यास खरा उतरता है या नहीं, लेकिन मैंने एक उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया जिसका शीर्षक है जिंदगी कहाँ से कहाँ तक,
और मैंने वह उपन्यास पढ़ भी लिया है।
अच्छा,
बहुत सुंदर,
बहुत धन्यवाद। और मैं कह सकता हूँ कि वह उपन्यास एक आत्मकथात्मक उपन्यास है जो मेरे जीवन पर आधारित है।
बिल्कुल, जब मैं वह उपन्यास पढ़ रही थी तो मैंने आपको ही नायक के रूप में देख लिया। बहुत सुंदर। मॉरिशसीय साहित्य के स्तर पर कृपया कुछ प्रकाश डालिए।
हाँ, वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत पुराने समय से हमारे देश में साहित्य की रचना होती है। मुझे याद आता है विशेष रूप से दुर्गा पत्रिका जो हस्तलिखित थी।
बिल्कुल। हाँ।
और उस जमाने में लोग छद्म नाम से कविता कहानी या जो भी है वे लिखते थे, तो उस समय से साहित्य शुरू हो गया था। बाद में पता चला कि भारत सरकार उनको देखना चाहती है, और जब लोगों ने देखा, विशेष रूप से डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी आए थे मॉरिशस में और वे हिंदी प्रचार सभा में आए, तो उन्होंने जब उस रचना को देखा, दुर्गा पत्रिका जो 3 भागों में संग्रहित है, उसको जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये मॉरिशस के लिए एक धरोहर है।
बिल्कुल।
और
बिल्कुल।
एक ऐसा साहित्य है जो दुर्लभ है, तो उन्होंने सोचा कि इसे प्रकाशित करवाकर पूरे विश्व में फैलाना चाहिए।
हाँ।
और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर ऐसा हुआ भी, भारत सरकार ने उसे प्रकाशित करवाया और पूरे विश्व में उसका वितरण भी हुआ। तो मैं कह सकता हूँ उसी समय से हिंदी साहित्य, मॉरिशस का हिंदी साहित्य स्तरीय था। अब बाद में जब हम आते हैं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले तो बहुत लोगों ने, जैसे दीपचंद बिहारी है, डॉक्टर चिंतामणि है, ऐसे बहुत लोग हैं, प्रोफेसर वासुदेव विसुंदियाल है,
जी हाँ।
इन लोगों ने बहुत परिश्रम किया और उन्होंने साहित्य को एक स्तर दिया।
बिल्कुल।
बाद में जब अभिमन्यु अनंत जी आए तो मान लिया जाए हिंदी साहित्य, मॉरिशस का हिंदी साहित्य पूरे विश्व के लिए एक स्तरीय साहित्य बन गया।
बिल्कुल हाँ।
उसके बाद जब रामदेव धुरंधर जी आए, उनको तो भारत की ओर से इफ्को का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है।
हाँ।
और शायद ही भारतीय को भी यह प्राप्त नहीं होता है।
हाँ।
और काफी बड़ी रकम होती है,
ये तो मॉरिशस के लिए प्रशंसनीय बात है।
हाँ, तो इस प्रकार से अन्य लोगों ने लिखना शुरू किया, जैसे कल्पना लाल जी है,
जी हाँ,
मान लिया जाए महिला लेखिका में, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लिखने लगे। और मैं कह सकता हूँ एकाध नाम मैं लेना चाहूँगा,
बिल्कुल,
जैसे अभिमन्यु अनंत है, रामदेव धुरंधर है, हेमराज सुंदर है, डॉक्टर जगा सिंह है, राजी रामन है, श्रीमती कल्पना लाल जी है, इंद्रदेव भोला है, विद्वंती शंभू है, ऐसे अन्य लेखक हैं जो लोग लिख रहे हैं। और कुछ लेखकों की रचनाएं तो पाठ्यक्रम भी आ चुके हैं,
बिल्कुल,
यहाँ तक कि भारतीय पाठ्यक्रम के साथ साथ कैम्ब्रिज में भी उनको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की रचना और यहाँ के साहित्यकार स्तरीय है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपकी पुस्तकें भी परीक्षाओं के लिए आ गई हैं।
सौभाग्य की बात है।
बहुत अच्छी बात है। नए साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे शंभू जी?
अच्छा, हर समय में साहित्यकार नया होता है, उभरते हुए होते हैं, और दुर्भाग्य की बात होती है कि बहुत से लोग उभरते हैं और कुछ ही दिनों में वे
मुरझा भी
जाते हैं, पर अभी मैं देखता हूँ कि कुछ नवोदित लेखक है, जैसे गुलशन शुक्लाल जी है, विनय गुदारी जी थे, हेज़गे भी है बिहारी, और रोशनी है, ऐसे कुछ नवोदित लेखक है, विद्वंती शंभू है,
बिल्कुल,
और सुमति संधू है, अब सुमति बुधन हो चुकी है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे रचनाकार है जो लिख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में रचनाकार बहुत कम है, और हम जिस कागार पर आ गए हैं कि मान लिया जाए हमारा जमाना लगभग खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये नवोदित लेखक जो हैं वे लिखें और भावी पीढ़ी को प्रेरित करें, ताकि हमारा साहित्य जीवित रहे और जिस स्तर तक आए हैं उससे भी आगे, क्योंकि आजकल बहुत ही सुविधा है, जैसे बोलते हैं प्रौद्योगिकी के ज़माना में जी रहे हैं, तो सुविधाएं बहुत है, फेसबुक है, इंटरनेट है, इसके प्रभाव से वे लोग परिचित है और हमसे ज़्यादा बेहतर वे चला भी लेते हैं। इसलिए मेरी यही प्रेरणा रहेगी, यही बात रहेगी कि वे लोग लिखते रहें, और हमारी ओर से पूरी शुभकामनाएँ हैं उनको।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी चाहते थे कि यदि आप उन्हें प्रेरित करें लिखने के लिए, क्योंकि आप बैठका चलाते हैं, कितने ही छात्र हैं, यदि उनको प्रेरित करके लिखवाएं या वे यदि लिखेंगे तो भविष्य में अच्छा होगा।
यहाँ पर मुझे कबीरदास की एक बात याद आती है, मैं कहना चाहता हूँ, करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रस्सी आवत जात तें सील पर परत निशान, की कोशिश करने वालों की हार नहीं
कभी नहीं होती। हाँ।
एक दूसरी जगह पर गुप्त जी ने यह लिखा है कि दुख दर्द जो भी हो सो धैर्य पूर्वक सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर।
बिल्कुल, जहाँ चाह है वहाँ राह है, राह मिल जाती है।
बिल्कुल
बिल्कुल, हाँ, यदि कोशिश करेंगे तो आगे चलकर अच्छा लिख सकेंगे। हो सकता है शुरू में अच्छा नहीं हो, लेकिन यदि लिखते जाएं कोशिश करते रहें तो आगे चलकर वे अच्छे लेखक भी बन जाएंगे।
जरूर, द्विवेदी जी जब मॉरिशस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब आधुनिक काल शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अभी जल स्रोत फूटा हुआ है, तो जल स्रोत जब फूटता है तो उसमें मैला पानी बहता है
शुरू में,
धीरे धीरे वह साफ
होने लगता है।
तो हमारे रचनाकार, हमारी भाषा, हमारा साहित्य भी ऐसा ही है, धीरे धीरे उसमें निखार आता जाएगा और वह लोगों के लिए बहुत ही सुंदर
आगे आगे चलकर चमकने भी लगेगा। क्यों नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। तो शंभु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें पूर्ण आशा है कि आपसे प्रेरित होकर नए साहित्यकार भी सामने आने में नहीं हिचकिचाएंगे।
बिल्कुल, मेरी ओर से भी सभी लोगों को शुभकामनाएं और विशेष रूप से क्षितिज जो विश्व हिंदी सचिवालय है उनको मैं धन्यवाद कहूँगा कि और MBC को कि मुझे यहाँ पर आकर कुछ बोलने का मौका मिला और विशेष रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी हुई।
हमें भी बहुत खुशी हुई कि आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए और हमने आपस में बातचीत की और हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, सीखने को भी मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप आगे भी लिखते रहेंगे और आगे भी हम आपको फिर से बुलाएंगे और हमारा साक्षात्कार फिर से होगा। बहुत धन्यवाद शंभु जी, नमस्ते।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।